Ladies and gentlemen, good day and welcome to the H2 FY26 results conference call of Man HR Solutions Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Chandni from Equirus X. Thank you, and over to you, ma'am.
Thank you, Steve. A very good morning to everyone. Welcome to H2 FY26 earnings call of Man HR Solutions Limited. From management team, we have with us Mr. Rajiv Kumar, Managing Director and CEO, Mr. Deepak, CFO, and Ms. Rajini Kumari, Director. The call will begin with opening remarks from the management, after which we will open the floor for Q&A. With that, I would like to hand over the call to Ms. Rajini for opening remarks. Thank you, and over to you, ma'am.
Good morning, everyone. I am Rajini Kumari, Whole-time Director of Man HR Solutions Limited. On behalf of the entire Man HR family, I would like to warmly welcome all our shareholders, investors, analysts, and stakeholders to our inaugural earnings conference call. This is a very special moment for us. Man HR Solutions started with a simple vision of creating a reliable, compliant, scalable workforce solution platform for business across India. Over the years, through the dedication of our employees, trust of our clients, and support of our partners, we have steadily built a strong presence in manpower outsourcing and workforce management industry. FY 2026 has been one of the most significant years in our journey. In February 2026, we successfully completed our IPO and got listed on BSE SME platform. Becoming a publicly listed company is an important milestone and reflects the confidence that investors have placed in our business model, in our team, and our future growth potential. I would like to sincerely thank all our shareholders for their trust and support. For those who are new to Man HR Solutions, we provide end-to-end workforce management solutions, including manpower outsourcing, staffing, payroll management, facility management, and compliance services. Today, we maintain a workforce deployment base of over 10,000 personnel and serve clients across sectors such as e-commerce, quick commerce, logistics, manufacturing, warehousing, and facility management. Coming to our performance of H2 FY 2026, it was encouraging. We reported total income of 12,656.59 lakh, representing a growth of 28% year-on-year, while net profit increased by 158% year-on-year to 432.20 lakh. For financial year 2026, the company reported net profit of 750.29 lakh. While the year saw certain revenue adjustments due to contract repricing, billing cycle changes, we remained focused on improving operational efficiency, strengthening internal processes, enhancing productivity, and maintaining financial discipline. These efforts help us improve profitability and strengthen our balance sheet. Following the IPO, our financial position has become significantly stronger. We ended financial year 2026 with net worth of 3,751 lakh, cash and bank balance of 2,434 lakh, and a virtual debt-free balance sheet. This provides us with a strong foundation to pursue future growth opportunities. Looking at the industry, we remain very optimistic. India continues to witness strong growth in e-commerce, quick commerce, logistics, warehousing, manufacturing, and organized workforce solutions. Businesses today increasingly seek reliable outsourcing partners who are provided skilled manpower, ensure statutory compliance, and deliver operational efficiency. We believe Man HR Solutions is well-positioned to benefit from these long-term structural trends. As we move into financial year 2027, our priorities are clear. We will focus on deploying IPO proceeds with working capital extension, accelerating our transitions towards the pay-and-collect model, expanding into new geographies and industry segments, strengthening client relationships, and increasing our presence in higher-value service offerings such as payroll management, compliance services, and HR solutions. Our objective remains simple: to build scalable, compliant, and sustainable organizations that create long-term value for clients, employees, and shareholders. Before I conclude, I would like to thank our employees for their hard work, our clients for their continued trust, and our investors for their confidence, and our board member and advisors for their guidance throughout this journey. Thank you all of you for joining us today and for your continued support. I will now request the moderator to open the floor for a question and answer session. Thank you so much.
Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment for the question queue assembles. The first question comes from the line of Shan Patel with SPM. Please go ahead.
Yeah, thanks for the opportunity. Few questions to ask. My first question is regarding this H2 mein revenue aur PAT na dono mein growth dikh rahi hai, lekin ye full year comparison relatively moderate lag raha hai. So as a investor, performance ko kaise interpret karenge?
Thank you for your question. So the performance should be viewed separately for both half-yearly and full-year perspective. Agar aap half-yearly perspective se dekhe, to company ne revenue aur PAT mein pichle saal ke comparison mein kaafi achha growth dikhaya hai. Hamara FY 2025 ka jo half-yearly ka revenue tha, wo 98.85 crore se badhke is saal 126.57 crore hua, jo 28% ki year-on-year growth dikhata hai. साथ ही हमने जो पैट है उसमें लास्ट ईयर 1.68 करोड़ था जो इस साल इंक्रीज होकर 4.32 करोड़ रहा जो हमें हमारी ग्रोथ दिखाता है पैट की अराउंड 158%. सो कमिंग टू फुल ईयर एनालिसिस, सो रेवेन्यू और पैट में जो मॉडरेट डिफरेंस रहा है ग्रोथ के परस्पेक्टिव में उसके रीजन अलग अलग रहे हैं. रेवेन्यू को अगर देखा जाए तो हमारा लास्ट ईयर स्टार्टिंग में हमने कुछ क्लाइंट्स इंसिस्ट कर रहे थे पे एंड कलेक्ट मॉडल के लिए, पर हम उनका ये रिक्वेस्ट इसे एक्वायर नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी ने उस टाइम एक डिसिप्लिन कैपिटल अप्रोच को फॉलो किया और अपने कैपिटल को रिग्रेसिव वे में अप्लाई नहीं किया. बट आफ्टर आईपीओ कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग हुई है और अब हमारे पास इतने फ्लेक्सिबल फंड्स हैं कि हम अपने उन क्लाइंट्स को भी एक्वायर कर सकें जिनको हम लास्ट ईयर ड्यू टू फंड कॉन्स्ट्रेंट हम एक्वायर नहीं कर पाए थे. कमिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप देखा जाए तो लास्ट ईयर आप FY 2025 में एक 6.5 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल प्रायर पीरियड इनकम इंक्लूडेड था, जिसकी वजह से जो बेस प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा एलिवेट दिख रहा था. इसलिए ईयर ऑन ईयर पैट कंपैरिजन अंडरलाइन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं करता. ओवरऑल मैनेजमेंट का ये मानना है कि H2 परफॉर्मेंस करंट बिजनेस मोमेंटम को बेटर रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और इम्प्रूव कैपिटल पोजीशन के साथ कंपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए एक बेटर पोजीशन पे है. थैंक यू.
अंडरस्टूड. एंड ये आगे जाकर इन्वेस्टर अर्निंग्स क्वालिटी को किस नजरिए से देखेंगे? क्या ये FY 2026 अर्निंग्स प्रोफाइल को ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है?
इन्वेस्टर शुड लुक फाइनेंशियल ईयर 2026 एज अ स्ट्रॉन्गर एंड क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ कंपनीज एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस एंड अर्निंग क्वालिटी. इस साल कंपनी ने सक्सेसफुली आईपीओ कंप्लीट किया जो इन्वेस्टर के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स कंपनी बिजनेस मॉडल, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी. गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप और बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर रहेगा. जैसे जैसे बिजनेस स्केल होगा हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी profitability को सपोर्ट करेगी और ओवरऑल फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ का मेजर कंट्रीब्यूशन बिजनेस एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्गर कोर ऑपरेशन से आने की एक्सपेक्टेशन है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.
मेरा एक और क्वेश्चन था, ये जैसे कि आपने आईपीओ का बताया तो आईपीओ के थ्रू कंपनी ने काफी कैपिटल रेज किया है और ये बैलेंस शीट पर स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन भी है. सो मैनेजमेंट इस कैपिटल को किस डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे
हैं? हाय राजीव, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर. मैं इसका आंसर देना चाहूंगा. हमारी पहली प्राथमिकता व्यवसाय विस्तार और उसकी जरूरत को पूरा करना है. इसके साथ अच्छे इक्विटी सर के ऑफर के लिए नजर बनाए हुए हैं और हर निवेश का उद्देश्य कंपनी के शेयर धारक और उसको लंबे समय तक जोड़ के रखना है. थैंक यू.
ओके, अंडरस्टूड. एंड सर, ये क्या एक्विजिशन कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ को मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस देती है?
हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि स्टाफिंग वर्कर्स मैनेजमेंट सेक्टर में कई अच्छे अवसर मौजूद हैं. हम ऐसी कंपनियों को जोड़ना चाहते हैं जिनका क्लाइंट बेस स्ट्रांग हो और उससे हमारा बिजनेस में बहुत सारे सिग्निफिकेंट जोड़ने से महत्वपूर्ण मुझे जानकारियां क्लाइंट हम एड ऑन कर चाहेंगे.
एंड सर, माय लास्ट क्वेश्चन, ये मैनेजमेंट किस टाइप की एक्विजिशन टारगेट इवेल्यूएट कर रहा है एंड किन पैरामीटर्स पर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक्सेस किया जा रहा है?
हमारा फोकस वर्कर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग, पेरोल संबंधित सेवाओं से जुड़ी हुई कंपनियों को एक्विजिशन करने पर हम विचार कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं जिस कंपनी का काम हमारे कंपनी से मेल खाता हो. ऐसी कंपनी को हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे और उससे हम काम भी कर रहे हैं.
थैंक यू. That's it from my side. Thank you.
Thank you. The next question comes from the line of Nishita Sanklesha with Sapphire Capital. Please go ahead.
Thank you for the opportunity, sir. I had a few questions. So, mera first question hai ki aapne ye jo group consolidation ke baare mein baat ki hai, usse shareholders aur business ko kya benefits mil sakte hai, sir?
ग्रुप कंसोलिडेशन से हमारा जो बेनिफिट होगा, इससे क्या होगा कि हमारे पास नए क्लाइंट एड ऑन होंगे. जब हम किसी भी ग्रुप को हम एक्विजिशन करते हैं तो उसके क्लाइंट का भी डेटाबेस और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमें मिलता है और इससे हमें फायदा ये होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है. जब हम किसी भी कंपनी को एक्विजिशन करेंगे तो हमें उनका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें केवल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होगी. तो उससे हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारे शेयर धारक का भी उसमें फायदा होगा.
ओके सर, और ये जो मैनेजमेंट किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवैल्यूएट करता है तब जो फैक्टर्स होते हैं तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है सर?
इसका आंसर मैं देना चाहूंगी. While evaluating growth opportunity, management का focus revenue growth के साथ साथ sustainable and profitable growth पर होता है. इसलिए हर opportunity को grab करते हुए time हम ये evaluate करते हैं कि इस particular business opportunity का हमारे EPS, return on equity, return on capital and long term value creation for shareholders पर क्या impact पड़ेगा. इसलिए हम उन अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी देते हैं जहां हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबिलिटी दिखे और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी दिखे. सो ओवरऑल अप्रोच ग्रोथ के साथ साथ एक प्रॉफिटेबिलिटी में बैलेंस बना के चलना है ताकि कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ शेयर होल्डर्स का प्राइस और उनको एक एक्चुअल हम शेयर डिलीवर कर पाए.
ओके, और एक क्वेश्चन था, ये मैनेजमेंट ने जो FY29 तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू एस्पिरेशन शेयर किया है उसमें ये जो टारगेट जो होगा उसको अचीव करने के लिए कौन से की ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे?
मैम, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा. हमें अपने व्यवसाय मॉडल में बहुत मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, नए क्षेत्रों में विस्तार करना है. हमें मौजूदा ग्राहकों के साथ हमें और मजबूत रणनीति बनानी है और अधिग्रहण के इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें मदद करेंगे और बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स थे जो हमारे भी मौजूदा क्लाइंट है, जिसके वर्टिकल्स में मैं अपने आप को अभी तक क्या कर रहा था, मैं केवल मैनपावर डिप्लॉयमेंट कर रहा था, उनके हम थर्ड पार्टी पेरोल को हम नहीं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को हम बिजनेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे पास फंड क्रंच था, तो हम 3PL मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे। तो अभी जो आफ्टर IPO जो सबसे पहला मेरा फोकस होगा, हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की तरफ जाए, जो मौजूदा क्लाइंट में ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और हम उससे इस लक्ष्य को हासिल अगले 3 साल में हमने रखा है कि हम करेंगे।
ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग।
थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू विश टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर द मैनेजमेंट, यू विल प्रेस स्टार एंड 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन द लाइन ऑफ सत्वन ठक्कर विद क्रिस, प्लीज गो अहेड।
थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर ग्रोथ के साथ मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है, या कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ मेंटेन करने में कॉन्फिडेंट है?
हाय दीपक दिस साइड, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट नाउ पैनाटर इज वर्किंग ऑन अ बैलेंस्ड अप्रोच, लाइक वाइल सर्टन कॉन्ट्रैक्ट डू कम विद द लाइक लोअर मार्जिन विच स्केल क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर our main objective is not for the revenue growth but profitable growth and a sustained improvement in return ratios and earnings.
Okay sir, and sir abhi kaun se industry sector mein demand ko drive kar rahe ho jahan company ko sabse zyada opportunity nazar aa rahi hai is waqt?
As our jaise hamare past experience ki baat kare, we are primarily focused on e-commerce, quick commerce and logistics sectors. Now, with the investment from IPO, we are going forward to the manufacturing and infrastructure also to widen our client base, and so that we can cater the services to all the sectors which are right now prevalent in the Indian economy, to provide them a good services and a sustainable platform from which they can manage their payroll in their statutory compliances and workforce management.
ओके सर, एंड सर अभी ये जो कॉम्पिटेटिव स्टाफिंग इंडस्ट्री में है, पैनएचआर को कॉम्पिटिटिव से अलग क्या बनाता है, लाइक कंपनी के की डिफरेंशिएटर्स क्या है?
बेसिकली पैनएचआर 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज फर्स्ट इज कंप्लायंस क्रेडिबिलिटी, हैविंग एन एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 2015 यू आर वर्किंग ऑन अ कंटिन्यूअसली विद 100% कंप्लायंस स्ट्रक्चर एंड विद द चेंजिंग द लेबर लॉज एंड लेबर नॉर्म्स, कंपनीज आर वेरी मच इनटू द like pressure from the departments, say like they should be very much compliant, and the clients are also looking for the companies who will be providing them the services, who no doubt only give them the workforce management plus look after the all compliance costs. Second is our financial strength, as we ended strong in the financials in 2026, and we will be going on a target of achieving 1000 CR by 2029. That will be very much beneficial for us. And third is the integrated model. We not only provide the manpower to the clients, but we also manage their end-to-end life cycle. That is their salary, their compliances and everything. Like we provide like a single window to each and every client so that they don't have to move from one window to another for the getting of those services. This is the biggest 3 pillars on which we are working right now.
And the biggest okay, sir, one more last question. यस सर, एंड वन क्वेश्चन लाइक लास्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट के नजरिए से कंपनी के ग्रोथ प्लान्स के सामने सबसे बड़े रिस्क और चैलेंजेस क्या है सर?
एज वी वर्क, अभी हम लोग जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे सिनेरियोस के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज योर जियोग्राफिकल सिनेरियोस आर देयर और लेबर कंप्लायंसेस आर देयर एंड एवरीथिंग, और ड्यू टू द एक्सपर्टीज वी आर हैविंग राइट नाउ, we are having a vast structure of the manpower, plus we are having the vast bucket of clients in which we are providing our services to each and every sector. If one sector drops, we are having a sustainable income jisse hame koi uska effect nahi padta hai whatever the changes are there, and our growth plans are very simple, to provide the quality services to our clients, better compliances and everything.
Okay, great sir. Thanks for the detailed answer, sir, and all the best for the next quarter results.
Thank you very much, sir.
Thank you. Participants, If you wish to ask a question, you may press star and one. The next question comes from the line of Hiral Nandu with Kalpa Groups. Please go ahead.
Hello? Hello, am I
Hello.
audible?
Yes, you are audible.
Hi, ma'am. First of all, good afternoon, ma'am, and thank you for this opportunity. मैम मेरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर अगले कुछ सालों में आरओई और आरओसीई को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और मैनेजमेंट रिटर्न रेशियो को कैसे देखता है?
ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. सो मैनेजमेंट का जो हाईली फोकस है हेल्दी रिटर्न रेशियो को मेंटेन करने पे पूरी तरीके से है. यस, टेम्परेली थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी क्योंकि हम अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट करेंगे फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पर्पज के लिए, बट स्टिल हर डिसीजन को लेते टाइम, हर मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते टाइम हम ये इवेल्युएट करेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल को एनहेंस करने में कैसे बेनिफिशियल साबित होगा.
ओके एंड मैम, क्या इनऑर्गेनिक ग्रोथ सिर्फ स्टाफिंग और वर्कफोर्स मैनेजमेंट तक की लिमिटेड रहेगी या कंपनी एडजेसेंट सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगी?
हमारा प्राइमरी फोकस वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड एडजेसेंट सर्विस जिसमें हमारा कोर एक्सपर्टीज है वो उसी में रहेगा. इनऑर्गेनिक ग्रोथ जैसे एक्विजिशन के बारे में हमारे चेयरमैन सर ने बात करी, हम उसके लिए एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करेंगे. हमारा एक्विजिशन ज्यादातर उन्हीं कंपनीज के लिए होगा जो सेम सेक्टर में डील करती है जिससे हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन होगा. हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करेंगे बिकॉज ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा.
ओके एंड मैम, वन लास्ट क्वेश्चन कि FY29 तक पैन एचआर सॉल्यूशन को आप किस पोजीशन पर देखते हो और अगले 3 सालों में ओवरऑल रोड मैप क्या होगा? तो
हेलो, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा. पहले की तुलना में आज पैन एचआर की स्थिति पहले से बेहतर, आपका आईपीओ पहले से बेहतर भी है. पहले हमारा 10,000 मैन पावर डिप्लॉयमेंट था. 10,000 जब हम आईपीओ ले गए तो हमारा मैन पावर जो वर्कफोर्स एक्सपेंस थी वो 10,000 की थी. एज ऑन डेट देखो मैं 11,000 को क्रॉस कर चुका हूँ जो अभी रेगुलर मैनपावर हमारे पेरोल पे हैं. अभी कुछ एरियाज जो हम नहीं कर रहे थे, जैसे कि हम केवल नॉर्थ में काम कर रहे थे, ईस्ट में काम कर रहे थे, साउथ के कुछ पार्ट में हम काम कर रहे थे. आपसे राय की हमने साउथ में भी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है और वेस्ट में भी स्टार्ट किया है. वेस्ट में भी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और अभी जो हमारा मौजूदा जो मैनपावर डिप्लॉयमेंट है वो अभी 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गया है. और हमारा काम है कि हम इसको 3PL मॉडल, B2B मॉडल में हम अपने आप को वहां पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जो पहले हम नहीं कर रहे थे. अभी हमारा काम है, मेरा फोकस होगा जो हम 3PL मॉडल पे इंक्रीज करें जिससे हमारा रेवेन्यू पैक दोनों इंक्रीज होगा. आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, 17 क्लाइंट्स हैं और हमारे लॉजिस्टिक, वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम काफी स्ट्रांग प्रेजेंस रखते हैं. आईपीओ के बाद हमारी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग हुई है और हमारा ग्रोथ एक्सिलरेट करने में हमें रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिला है. आने वाले 3 साल में जो हमारा की एरिया फोकस हम करेंगे, सबसे पहला फोकस जो वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट स्केलअप पे होगा और हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ साथ नए बिजनेस को हम एडवांस करेंगे. दूसरा फोकस हमारा जो हम क्लेक्ट मॉडल, पे एंड क्लेक्ट मॉडल, हम पहले पहले जो हम क्लेक्ट एंड पे मॉडल पे काम कर रहे थे, अब हमारा कोशिश होगा कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो हमारे सेम क्लाइंट्स में हैं जो क्लेक्ट पे एंड क्लेक्ट मॉडल है, हम उसको भी उसमें भी हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और हमने स्टार्ट कर भी दिया है कुछ एक दो लोकेशन पे जो हमारे मौजूदा क्लाइंट्स हैं. तीसरा फोकस हमारा होगा हाई ग्रोथ सेक्टर में एक्सपेंशन पे होगा, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में डिमांड काफी स्ट्रांग है और हम उस अपॉर्चुनिटी को कैच करेंगे, ग्रैब करेंगे. चौथा फोकस होगा हमारा हायर मार्जिन सर्विस पे रहेगा, स्टाफिंग के साथ साथ पेरोल आउटसोर्सिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, एचआर आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसी सर्विस भी होगा. जब हम पहले कंसल्टेंसी सर्विस नहीं कर रहे थे, हम केवल डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, हम केवल मैन पावर का डिप्लॉयमेंट करते थे और उसका पेरोल करते थे, जो हम व्हाइट कॉलर हायरिंग नहीं करते थे। इसके साथ साथ हम ब्लू कॉलर भी बिजनेस शुरू करते हैं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमारी कॉस्टिंग वहां पे कम होगी। जो हम मैन पावर जो हमारा जो हम इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको हम पूरा यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास नहीं था, बट अब हमने व्हाइट कलर का भी काम हमने स्टार्ट कर दिया है जो वन टाइम स्टाफिंग होता है। पांचवा जो हमारा होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल एक्सलेंस पे रहेगा, एचआरएमएस प्लेटफॉर्म पे रहेगा और ऑटोनॉमस टूल्स पे रहेगा और कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारा कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, शायद बढ़ेगा। आज हम एक डेट फ्री कंपनी है, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है और न पहले भी रही है और अभी भी हमारे पास कोई भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो हम बैलेंस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के साथ साथ हम 3 ईयर में पैनचर को हम वहां 1000 करोड़ का जो हमने टारगेट रखा है उसको हम एक्चुअली बड़े आसानी से कर देंगे। जो हमने इस साल लक्ष्य रखा है वो अप्रोक्स जो हमारा टर्नओवर है उसमें अप्रोक्स 40% इंक्रीज मुझे करना है।
ओके ओके सर, आई थिंक आई गॉट माई आंसर एंड दैट्स अ ग्रेट इनसाइट एंड थैंक यू फॉर एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर।
ओके
थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। I now hand the conference over to Ms. Chandni for closing comments.
On behalf of Pan HR Solution and Equibridge Advisors, I would like to thank everyone for taking time to join today's call. Should you have any further queries, please feel free to connect with us at info@equibridgex.com. Thank you everyone for joining. Thank you Rajiv sir and team.
Thank you ma'am.
Thank you. On behalf of Equibridge X, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines. Thank you.